ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனோ ஹம் லோக் வைதிக் தஷ சாந்தி பாட் अंतर्गत तृतीय शांति पाठ का विचार कर रहे हैं। इस शांति पाठ का तीन विभाग किया जा सकता है, उसमें दो भाग का विचार हम लोग कर चुके। जैसे कि कहा, யந்தசா மிருஷப விஷ்வரூபந்தோபியோ அத்யமிருதாத் சம்பபூவ சமேந்திரோ மேதயா ஸ்பிருணோது அமிர்தஸ்ய தேவதாரணோ பூயாசம். ஏக விபாக் ஹுவா. இஸ்மே பிரணவ் சே பிரார்த்தனா கீ கயி பிரக்யா பல் கீ, प्रज्ञा बल की प्रार्थना के लिए ये जप है। यदि हमको प्रज्ञा बल की आवश्यकता है, ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो ओंकार से ये प्रार्थना है, ये जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए इसका। ग्रंथार्थ धारण शक्ति के साथ साथ ये जो हमारा शरीर है, कार्यकरण संघात, वो भी यदि स्वस्थ हो तो हम ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए दूसरा विभाग जिसको हम करेंगे, उस विभाग में कार्यकरण संघात स्वस्थ हो, आत्मज्ञान के योग्य बने, ये प्रार्थना की गई। जैसे कहा, शरीरम मे विचर्षणम जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम्। ये जो तीन पंक्ति है वो दूसरा विभाग हुआ। इसके अंदर ये जो अपना कार्यकरण संघात है वो रोग रहित हो, स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही, स्वस्थ अंतकरण से, स्वस्थ कर्मेंद्रिया और स्वस्थ ज्ञानेन्द्रिया के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना की गई कि मेरा ये जो शरीर है वो रोग रहित हो और मेरी जो कर्मेंद्रिया है वो उत्तम कर्म करने वाली हो और मेरी ये जो जिह्वा उपलक्षित ज्ञानेन्द्रिया है वो बहुत सुनने वाली वगैरह हो। यहां तक हम लोगों ने विचार कर लिया। अब जो तीसरा विभाग जिसको हम कहेंगे कि ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम् मे गोपाय, ये जो तीन वाक्य है वो उनको हम तीसरी कोटि में रखेंगे। तीसरा वाक्य उसको कहेंगे। इसमें एक शंका का उत्तर है। वो शंका यह है कि प्रणव से प्रार्थना क्यों की गई। प्रज्ञा बल का सामर्थ्य किससे मांगा? प्रणव से। और शरीर की स्वस्थता किससे मांगी? प्रणव से। ये प्रार्थना किससे है? प्रणव ओमकार से है। तब सवाल उठता है कि प्रणव तो शब्दात्मक है, अकार आदि वर्णों का समूह ही ओमकार है ना, अकार उकार और मकार। और शब्द कैसा होता है बताओ? जड़ होता है कि चेतन होता है? शब्द जड़ होता है, अचेतन होता है। तो प्रणव आखिर में तो अचेतन ही हुआ। तो ऐसे अचेतन प्रणव से प्रार्थना कैसे घट सकती है? प्रार्थना ही नहीं, प्रणव का यहां पर इंद्र शब्द से अभिधान किया गया। स मेन्द्रो मेदया स्पृणोतु, इस वाक्य में प्रणव के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग है। यानी यह भी कहा गया कि प्रणव इंद्र है, यानी कि सर्व कामेश परमेश्वर, वो सभी कामनाओं का स्वामी है, परमेश्वर है। ये भी क्यों कहा गया? कैसे घट सकता है? जो अचेतन प्रणव के अंदर इंद्र शब्द का अभिधान और ये जो प्रार्थना की गई, वो प्रार्थना कैसे घट सकती है? तो देखो यही उत्तर हुआ। ये जो आप लोग देखियो, ब्रह्मण कोशोसी, ये उत्तर हुआ कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रणव है उसको हम कहते हैं कि आप कोशोसी, ये प्रणव आप ब्रह्म का कोश है। कोश प्रणव ब्रह्म का कोश है। ब्रह्मण यानी कि परमात्मन, षष्ठी विभक्ति है, ब्रह्म का यानी कि परमात्मा का। कोशो असी, आप कोश है। देखो कोश उनको कहते हैं जो रहने का स्थान हो, उसको कहते हैं कोश। देखिए परमात्मा को रहने का स्थान यानी कि रहने का स्थान से अभिप्राय है उपलब्धि का स्थान। कौन है वो? ओमकार है। परमात्मा की उपलब्धि किससे होगी? कि ओमकार से। कहां होगी? तो कहा ओमकार के अंदर। ओमकार के अंदर यानी कि ओमकार कोश है। जैसे तलवार है वो किस में रहती है? कोश में रहती है। वो म्यान को क्या कहते? कोश कहेंगे। तो जैसे तलवार है वो अपने म्यान में, जैसे कोश में रहती है, और यदि आपको तलवार चाहिए तो तुरंत जहां पर ये म्यान लटकता हुआ तो क्या दिखता है आपको? नजर से क्या दिख रहा है? म्यान दिख रहा है ना। तलवार तो उसके अंदर है। तो आप जैसे कि तलवार की आवश्यकता पड़े और तुरंत उनको मंगाते हैं, फिर उसको पकड़ते अंदर से तलवार को खींच करके बाहर निकालते हैं। तो जैसे तलवार के लिए उपलब्धि का स्थान उनका म्यान है, वो तलवार का कोश है, वैसे ही परमात्मा आप चाहे खींच करके निकालना चाहे तो ओंकार के अंदर से निकाल सकते हैं। परमात्मा किस में रहता है? ओंकार में। ओंकार कोई म्यान थोड़ा ना, ओंकार म्यान से अभिप्राय है, कोश से अभिप्राय है कि परमात्मा की उपलब्धि है वो ओंकार की उपासना के द्वारा संभव है। दो प्रकार से, एक तो ओंकार की उपासना है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। अपने यहां कई एक आलंबन है, गायत्री आदि कई एक आलंबन है उपासना के लिए, किंतु उन सभी आलंबनों में जो ओंकार आलंबन है वो सर्वोत्तम है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ऐसा कठोपनिषद में कहा कि ओंकार रूप जो आलंबन है वही श्रेष्ठ है, वही परम है। इस ओंकार रूप आलंबन को जान करके ब्रह्मलोक के महीयते, उनकी महिमा जो है वो ब्रह्मलोक में हो जाती है। तो ये ओंकार क्या है? आलंबन है। आलंबन उनको कहते हैं जिसके बिना हमारा काम न चले। हम यदि किसी चीज से अवलंबित है तो उस चीज को हमको पास ही पास रखनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति पंगु है तो पंगु के लिए उनकी जो लाठी है वो क्या है? आलंबन है। पंगु व्यक्ति की बैठे हुए तो उनको सबसे पहले वो लाठी संभाल करके रखनी पड़ती है, कहीं इधर उधर चली गई तो उनके लिए तो उठना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लाठी संभाल करके रखनी पड़ती है। देखिए जिसको नंबर आ चुका है आंख का, अब देखना है तो क्या चाहिए? आलंबन चाहिए। किसका? चश्मे का। अब बताओ बोला क्या आपके पास आंख नहीं है, किंतु चश्मे के बिना आप स्पष्ट देख नहीं सकते हैं, इसलिए चश्मा क्या हो गया? आलंबन। आलंबन कहते हैं आश्रय को, माध्यम को, जिसके बिना हमारा काम न चले उसको कहते हैं आलंबन, आश्रय, माध्यम। तो ये जो परमात्मा का आलंबन है ये ओंकार, ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की प्रार्थना की जाती है तो ब्रह्म की उपलब्धि ओंकार के माध्यम से होती है। इसलिए ब्रह्म दृष्टिया आलंबनो असी, ओंकार से कहा गया कि हे ओंकार, हे प्रणव, आप जो है ब्रह्म दृष्टि से परमात्मा का आप आलंबन है। यदि परमात्मा को आप देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो ओंकार के अंदर होगा। जैसे हमारे उपनिषदों में कहा ना, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। परमात्मा अंगुष्ठ बराबर होकर के सभी भूत प्राणी समुदाय के हृदय के अंदर सन्निविष्ट है, प्रविष्ट है। तो परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी आप उनको देखना चाहते, उनसे बात करना चाहते हैं तो कहां जाना पड़ेगा? हृदय में। जैसे किसी व्यक्ति का मकान कोठी बहुत बड़ी है तो उनकी जो कोठी है उनकी चार दीवारी है जो उसके अंदर मानी जाएगी, चारों दिशाओं की जो दीवारें हैं वो भी वो उस व्यक्ति की मानी जाएगी। और कहा जाता है कि वो व्यक्ति कहां रहता है तो कहते हैं ये जो है बंगले में, ये कोठी में रहता है। तो वो कोठी 1000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है तो वो 1000 स्क्वायर मीटर है, वो पूरी जगह में उनकी कोठी है। और हम यदि कहते हैं कि वो कहां रहते हैं तो ये कोठी में रहते हैं। तो आप बताइए एक काल में वो एक साथ में वो 1000 मीटर में वो रहेगा क्या? नहीं। वो कभी आप देखेंगे तो बाहर गया हुआ है और कभी भोजन करना होता है तो वो डाइनिंग रूम में भोजन कर रहा है, सोने के लिए वो शयन खंड में सोया हुआ है और किसी के साथ चर्चा विचारणा करनी है तो वो बैठक खंड में बैठा हुआ है। वो परिचिन्न होता हुआ भी उनकी पूरी कोठी में वो उनकी उपस्थिति मानी जाएगी। शाम का समय है, उनको ऐसे ही बैठना है तो बाहर जो पार्क बना हुआ है बगीचा, उसके अंदर वो झूले के ऊपर उस समय बैठा हुआ है। तो वो एक व्यक्ति है, वो एक साथ में वो एक एक जगह पर ही मिलेगा। वो जब बगीचे में बैठा है तो वो कोठी के अंदर नहीं मिलेगा। फिर भी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति यही कोठी में ही रहता है क्योंकि उनका वो उपलब्धि का स्थान है। वो आपको उनकी आवश्यकता पड़ गई कि भाई अमुक व्यक्ति से कुछ बात करनी है तो आप कहां जाएंगे? उनके घर में जाएंगे क्योंकि आपको निश्चित पता है कि वो यहीं रहता है। तो संभव है कि वो कहीं एक महीने के लिए वो बाहर भी गया हो। आप यदि उनको ढूंढने के लिए जाए तो वहां से उत्तर मिलेगा कि वो हफ्ता दिन के बाद वो आ सकते। तो पुनः आप वहां जाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि वो बाहर निकल गए इसलिए आप यहां से सर्वथा वो निकल गए। तो आप एक हफ्ता के बाद भी जाएंगे, क्यों? कि वो रहता तो यही है। इसलिए वो व्यक्ति का जैसे उपलब्धि का वो स्थान है, वो व्यक्ति पिंड से शरीर से चाहे कहीं भी रहे किंतु उनका जो स्थायी पता है वो ये उनका वो मकान है। वैसे ही परमात्मा का यदि स्थायी पता 24 घंटा वो यहां पर उपलब्ध रहते हैं वो ओमकार है। इसलिए ओमकार है वो ब्रह्म दृष्टि से वो परमात्मा का आलंबन है। कोशवद वो उसमें रहते हैं। यद्यपि हमारा ये जो शरीर है उस शरीर में सर्वत्र हम यही कहते हैं कि मैं पूरे शरीर में हूं, ऐसा कहते हैं ना, किंतु विशेष रूप से स्थान हृदय है, हृदय में उपलब्ध होता है। हम यही कहेंगे कि मैं हूं, और मैं हूं ऐसा कहते हैं तब हम यहां पर हाथ रख करके कहते हैं मैं हूं। तो मैं कहां हूं? ये शरीर रूप में हूं। तो शरीर क्या है? अपनी आत्मा की उपलब्धि का स्थान है, मैं शरीर में हूं, शरीर कोष हुआ, उस कोष में उपलब्ध होता है परमात्मा। इसलिए परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी यदि उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो वो हृदय में ही होगा। वो और कहा तो है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिते शांत उपासित, इदम खलु सर्वम ब्रह्म। इदम शब्द का वाच्य, ये जो सारा संसार है वो ब्रह्म का ही पसारा है, किंतु विशेष रूप से उसका दर्शन करना चाहते हैं तो वो हृदय में होगा। बाह्य संसार है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। हमारे मन में प्रश्न उठ जाता है कि सर्वत्र परमात्मा मिलना चाहिए, सर्वत्र है तो देखिए सर्वत्र होते हुए भी पदार्थ की कुछ अपनी विशेषताएं रहती है कि परमात्मा का वहां पर सर्वांश ज्ञान नहीं होता है। जैसे एक जड़ पदार्थ ही उठा लीजिए, एक मिट्टी का ढेला उठा लीजिए, तो परमात्मा उसमें है कि नहीं है? है। अब परमात्मा का स्वरूप आप याद रखें, सत चित और आनंद, किंतु मिट्टी के ढेले में परमात्मा के सद्रूप की प्रतीति होगी, किंतु चिद्रूप और आनंद रूप की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि वो जो मिट्टी का ढेला है वो तमोगुण से बना हुआ, माया के तामस अंश का वो रूप है। इसलिए उसके अंदर सद्रूप की है पने की प्रतीति होगी, किंतु चैतन्य की प्रतीति और आनंद अंश की प्रतीति नहीं होगी। और जो चलते फिरते जो जीव है उसके अंदर आप जो है परमात्मा के सदंश के साथ साथ चिदंश की भी आप प्रतीति कर सकते हैं। चलते हुए व्यक्ति को हम कहते हैं ये है, ये भी कहते हैं, और चैतन्य है उस बात की भी प्रतीति हमको होती है। तो तमोगुण के अंदर क्रिया नहीं होती, वो जड़ होता है, और रजोगुण में क्रिया होती है। इसलिए जो रजोगुण से बने हुए पदार्थ है उसके अंदर परमात्मा के सदंश और चैतन्य अंश दोनों की प्रतीति होती है। और सज्जनों हमारा जो अंतकरण है वो सत्वगुण से बना हुआ है, हमारा जो अंतकरण है वो सत्वगुण का फल है। अपंचीकृत पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, उनमें से उनके अपने अपने सत्व गुण सत्वांश को लीजिए और उनको इकट्ठा कर दीजिए, उससे ये अंतकरण बना हुआ। इसलिए अंतकरण के द्वारा आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो पांचों का अनुभव करते हैं, और सत्वगुण से बना हुआ होने से परमात्मा के सत चित और आनंदांश तीनों का अनुभव अंतकरण के अंदर होता है। इसलिए परमात्मा का अनुभव यदि करना है तो वो हृदय कमल में होगा। जैसे सज्जनों गाय के सर्वत्र शरीर में दूध है, लेकिन उपलब्धि क्या, उनके श्रृंग दबाने से दूध मिलेगा?
नहीं।
तो उसकी खुरी को दबाने से मिलेगा?
नहीं मिलेगा।
या उनकी पूंछ को दबाने से मिलेगा क्या?
नहीं। उनके थान जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक दूध की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि सर्वत्र होते हुए भी उपलब्धि का स्थान जैसे वो थान है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है वो हमारा हृदय है। वो हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो कोष के अंदर व्याप्त, कोष के अंदर ये जो परमात्मा है वो पांच कोष से वो घिरा हुआ। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैतरीय श्रुति कहती है वो परमात्मा गुहा हितम है, गुहा में है वो। इसलिए क्या करना होगा? कोष का उच्छेदन करना होगा। जैसे आप कोष का उच्छेदन, उच्छेदन में उखाड़ना नहीं, कोष को जो है एक एक कोष को आप जो है बाद करते हुए चले जाए तो आपको परमात्मा की प्राप्ति वहीं पर होगी। अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी और आनंदमयी कोष, इस कोष का विचार करेंगे, कोष का विवेक करेंगे तो आपको जैसे वो मूंज घास होता है ना, उसके ऊपर से एक एक परत को आप उखाड़ते चले जाएंगे ना, तो अंदर से एक जो है सुई के बराबर एक बिल्कुल पतली सी सली मिलेगी, वो सलीका। वैसे ही ये आत्मा का दर्शन ऐसे होगा। इसलिए ये कोष, तो ये ओंकार भी क्या है? इस तरह से कोष है परमात्मा का, वो आलंबन है। ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना की जाती है तो ये सर्वत्र व्याप्त हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनकी उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को जो है प्राप्त करने के लिए हमारे यहां उपनिषदों में कई एक प्रकार की उपासनाएं बताई गई है, किंतु उन सब उपासनाओं में ये ओंकार की उपासना है वो श्रेष्ठ है। इसलिए उपासना के माध्यम से वो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला होने से वो यहां ठीक ही कहा, ब्रह्मणः कोशोसि, आप ब्रह्म का कोष है। और कोष का दूसरा अर्थ ये भी होता है परिचायक,